जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदानंदन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंद व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी व्रज जन रंजन यमुना तीरवन राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदानंद ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jai Ram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavan Sita Sita Ram Jaya Sita Ram Sita Ram Jaya Sita Ram Sita Ram Jaya Sita Ram Sita Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sri Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sri Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jamanit Nilabra Vishnu Vishnu Pada Paramahansa Parivrajaka Chari Divayandi Sastasat Shishyamata Vajananada Vinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Maharaj Ki Jai Nanda Kuti Vishnu Vinda Ki Jai Granta Rajyamata Bhagavadam Ki Jai Jai Nitai Gaura Hari Brahmanande Shri Shri Rama Janma Mahamahochav Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namastatyam Naran Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtavrayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Nashtaki Srimad Bhagavatam Raj Amlo In Navam Skandake Dasve Dhyayase Jisme भगवान राम जी के चरित्रों का गुणगान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के मुख से हम लोग आज सुनेंगे। आज सुबह भी सुंदर कथा हुआ था और भगवान की कथाएं मनुष्यों के हृदय को पवित्र करने वाली है और भगवान के इन जन्म लीला महोत्सव इत्यादि व्यक्ति के अंतर बाह्य शुद्धि करने वाला है। जब व्यक्ति इस जन्म उपलक्ष में मंदिर आता है, भगवान को प्रणाम करता है, स्तुति नति करता है, तो उनकी ये प्रक्रिया से श्री भगवान उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर के उनको ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि जिससे इस जीवन में उनकी साधु संगति हमेशा बनी रहती है और इनके प्रभाव से भगवान में उनका मन लगा रहता है। कारण यह है, साधु संगति में उनको हरि कथा मिलती रहती है और भगवान अच्युत की कथा निरंतर श्रवण करने से, उनके नाम का जप करने से व्यक्ति उन अच्युत भगवान की तरह अपनी स्थिति से, या वो कथाएं, भगवान अच्युत की कथाएं उनको अपनी स्थिति से च्युत नहीं होने देती, अर्थात उनको माया में गिरने नहीं देती है। तो इसलिए भगवान की जन्म लीलाएं और जन्मोत्सव इत्यादि मनाए जाते हैं और लीलाओं का गान व्यक्ति बारंबार करते रहते हैं। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा गाया जाने वाला जो ये चरित्र है, बहुत संक्षिप्त चरित्र है, लेकिन इस पर भी सुख मुनि ने उनको बहुत सावधानी से गान किया है, जिनका श्रवण मात्र से हम लोग अपने आप को पवित्र करेंगे। न केवल पवित्र करते हैं बल्कि कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद उन आशीर्वचन के रूप में, को व्यक्ति इन भगवान रामचंद्र जी के गुणगान करने से भगवान श्री रामचंद्र जी जैसी कोमलता को प्राप्त करेगा और उनके शील स्वभाव को व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति की भक्ति में अत्यंत उपादेय वस्तु है। हम सब लोग श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इन भक्ति करते हुए भी हमारा जो आचरण है वो आचरण स्निग्ध नहीं हुआ है। स्निग्ध का अर्थ यह है कि व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा न किसी को ठेस पहुंचाने की प्रक्रिया न करे, उनको स्निग्ध स्वभाव कहते हैं, अत्यंत पवित्र स्वभाव। यद्यपि नाम जप करते हुए हम लोग उन स्वभाव को प्राप्त करेंगे शनै शनै, लेकिन जब भगवान के आविर्भाव तिथि इत्यादि या कोई वैष्णव गण की आविर्भाव तिरुभाव तिथि इत्यादि आती है, तो उस दिन उनके चरित्र का विशेष रूप में गान चलता है। जैसे आप लोग आज सुबह से इसी कार्यक्रम में रत है, मंगल आरती में भक्तों को आए हैं, उनके बाद में एक बार कथा हो गया, ये दूसरी बार कथा हो रहा है, और अभी हो सकता है कि आप सब लोग भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे, दशहरा रथ यात्रा। तो विशेष जो पर्व पड़ते हैं उन पर्वों पर विशेष उन अवतार चरित्र का जब हम लोग गान करते हैं तो भगवान की विशेष कृपाएं हमारे पर उतरती है। खास करके श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण का फल सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि व्यक्ति का हृदय कोमलता को प्राप्त होता है, उनका हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है और कोमल स्वभाव एक ऐसी भूमि बताया गया भक्ति के लिए कि जिस भूमि में जैसे तैसे बीज बोया जाए तो वो तुरंत फलीभूत होता है। कुछ भूमि ऐसी होती है जहां पर बारिश अच्छी तरह गिरती रहती है, तो भूमि में आप कैसे भी बीज को बो दीजिए वो अनेक फल देने वाला होता है। उसी प्रकार कहते हैं कि इन कोमल हृदय श्री भक्ति देवी के लिए एकदम अनुकूल हृदय है, तैसी अनुकूलता को व्यक्ति प्राप्त होता है। आइए श्री सुखदेव गोस्वामी जी पाद के द्वारा नवे स्कंद के दसवें अध्याय के पहले श्लोक से ही उन रामचरित का गान सुखदेव गोस्वामी पाद करते हैं। शिशु को वाच सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तत्मात पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तत्मात दशरथो अभवत। तो भगवान उन रामचंद्र के गुणगान के पूर्व उनकी वंशावली बताते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाराज खटवांग नामक एक महान राजा हो गए। अब सब लोग खटवांग महाराज के विषय में परिचित है जो स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए थे। यह यशस्वी कुल है, यह सूर्यवंश जो चला उस वंश में एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ है कि जिनका चरित्र कलंकित है, उज्ज्वल चरित्र उन सारे राजा का। तमाराज खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और उन दीर्घबाहु से परम यशस्वी जिनका बहुत बड़ा यश था ऐसे श्री रघु जी उत्पन्न हुए और उन रघु से अजस्ततो जायत अज नाम के एक राजर्षि प्रकटित हुए और उसी वंश परंपरा में उन अज से महाराज दशरथ अभवत। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ का इस प्रकार प्रागट्य हुआ और कहते तस्या अपि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंश अंशन चतुर्द आगात पुत्रत्वं प्रार्थित सूर्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं और वो महाराज दशरथ के घर में ही देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने अपने अंश और अंशों के साथ अंश के अंश के साथ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान रामचंद्र जी के रूप में आविर्भूत हुए, प्रकटित हुए। और इन चारों का नाम बताते हैं राम लक्ष्मण शत्रुघ्न इति संज्ञा। इस नाम वाले के साक्षात चार रूप में श्री भगवान विचरण किए थे और जगत को अपने आचरण से बहुत सुंदर स्निग्ध व्यवहार इस जगत में उन्होंने प्रस्तुत किया था। हमारे उन आचार्य परंपरा के कई आचार्यों इसकी टिप्पणी लिखे हैं और इतना समय नहीं है मेरे पास, बाकी इस टिप्पणी में किस प्रकार ये चारों भगवान के ही अवतार है, कैसे कैसे हैं, उनको पुराणों से कोट करके उन्होंने रखा है। वंशीधर जी खासकर उनकी व्याख्या में मैं पढ़ रहा था आज, बहुत सुंदर व्याख्या है। तो श्रील प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि लोग लक्ष्मण को कदाचित मानते हैं कि शेष का अवतार है, बाकी भरत और शत्रुघ्न तो वो तो भगवान के अवतार नहीं, वो जीव तत्व मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये चारों चार तत्व भगवत तत्व है और भगवान के अलावा इतनी सहिष्णुता श्री भरत महाराज में कैसे है, हो ही नहीं सकता। तो ये चतुर्विध भगवान इन चार रूप में आविर्भूत हो करके जगत को इन सारा ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। इस सभी ज्ञान की आवश्यकता होती है इस संसार में, क्योंकि अनेक स्तर के इस संसार में लोग होते हैं जो जिस स्तर का होता है उस स्तर का आचरण दिखा करके उनको इनके ऊपर के आचरण में स्थित करके और भगवान उसी प्रकार जीव का धीरे धीरे उद्धार करते हैं। तो लौकिक, वैदिक और पारमार्थिक, ये तीनों प्रकार का व्यवहार इन सब लोग के लिए, इन इन भगवान के चार रूपों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे भरत महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को कैसे परतत्व को प्रेम करना चाहिए उनको बता रहे हैं। अच्छा लौकिकता क्या है इनमें? लौकिकता यह है कि एक भाई भाई को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह लौकिकता है। पारमार्थिकता भगवान के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, अपनी स्नेहमयी माता को त्याग करके भरत ने बताया। माता का त्याग कभी भी नहीं किया जाता किसी भी परिस्थिति में। वेद में लिखा गया है जो माता पिता का त्याग करेगा वो नरक जाएगा। लेकिन भरत महाराज ने किस प्रकार भगवान को प्रेम करना चाहिए, इस जगत के अपने सबसे स्नेही उन माता को त्याग करके दिखा। ये राम के प्रेम के कारण उन्होंने माता का त्याग किया, और इसकी जगह अगर कोई दूसरा पात्र होता था तो मां का त्याग भरत नहीं करते थे। पारमार्थिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा कि कैसे माता पिता की आज्ञाओं का जतन करना चाहिए भगवान रामचंद्र जी के द्वारा। तो ये चार रूप में भगवान सारे जीवों को इन तीन प्रकार के व्यवहार को सिखाते हैं, और भगवान के प्राकट्य इस प्रकार इन महाराज दशरथ के यहां हुआ। उनके चरित्र को भगवान रामचंद्र जी के चरित्र उन अनेकों वर्षों से विख्यात है, और उनको अनेक ऋषि मुनि के द्वारा उनको गाया गया है। इसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अगले श्लोक में बताते हैं कि तस्या अनुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी सुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापतेर मुहु। बोलते हैं राजन उन सीतापति श्री भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा बार बार गाया गया है, उनको गाते रहते तत्वदर्शी ऋषिगण जैसे वाल्मीकि इत्यादि उनका गान करते रहते हैं। और याद रहे अगर कोई तत्वदर्शी नहीं है, भगवान को तत्व से नहीं समझता है नहीं जानता है, वो उनके द्वारा गाया गया भगवान की जो गुणावली है उनका गान की गई गुणावली वो उतने प्रभावशाली नहीं होती है। व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति का जो बीज पड़ा है प्रत्येक जीव के हृदय में, उन बीज को पनपाने वाली नहीं होती है। इसलिए कहते तत्वदर्शी वीर ऋषि वीर भूरी वर्णितम, बहुत वर्णन उनका हुआ है, और श्रुतम ही त्वया। अरे महाराज आपने उनको बार बार श्रवण भी किया है। हम लोग जानते हैं भागवत के अंतर्गत ये राम कथा है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के चरित्र का सबसे विशाल ग्रंथ है, सबसे विशाल ग्रंथ जिनमें केवल भगवान की गाथाओं को गाया गया है, उनकी लीलाओं के उनके चरित्र का गान किया गया है। तो इसलिए ये श्लोक कहते हैं कि महाराज आपने उन चरित्र को बारंबार सुना है। उसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी पाद उनका संक्षिप्त में केवल वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कथाएं भगवान की गानी है सुखदेव गोस्वामी पाद को। ये तो आज ये राम जन्म महोत्सव, इसलिए हम लोग ने ये राम कथा चुना है, और उनके जन्म के उपलक्ष्य में बाकी अनेक जन्मों की अनेक कथाएं श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। भगवान के उन जन्म उन कर्मों को बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी पाद गाते हैं। तो वो एक श्लोक में पहले संक्षिप्त में पूर्ण रामायण को बोल देते हैं। एक श्लोक में वो कहते गुरु अर्थ त्यक्त राज्यो व्यचद अनुमनम पद पदाभ्याम प्रिया या पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरि इंद्र अनुजाभ्याम। तो आधा श्लोक हुआ इसमें। क्योंकि रामायण को पूरा गाना है एक श्लोक में। वो कहते कि उसी भगवान रामचंद्र जी उन दशरथ महाराज के यहां अवतरित हो करके अपने पिता की वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वन गमन किया। कहते गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर अनुवनम, अनुवनम का वन वन में घूमे। भगवान 14 वर्ष वन में रहे तो एक वन में नहीं रहे, भारतवर्ष के जितने भी वन उपवन इत्यादि जो कुछ भी है वहां उनका अटन हुआ, उनका चलना घूमना हुआ। तो कहते गुरु अर्थे उन राज्य लक्ष्मी का त्याग महाराज दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए। दशरथ नहीं कहे, याद रहे, दशरथ ने नहीं कहा कि आप वन में जाओ, दशरथ जी चाहते ही नहीं थे। कैके को वरदान दिया, वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, क्योंकि मुझे 2 बजे बंद करने के लिए बोला गया है इसलिए उसी स्पीड से मुझे चलना होगा। तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि जब उन कैकेयी ने वरदान मांगा, दशरथ जी तुरंत मूर्छित होकर गिर गए, और उनके बाद में जब जागृत हुए तो खूब अनुनय विनय किया, पूरा रात उसी में बीत गया, क्योंकि वो भगवान को अपने प्राण पण से भी ज्यादा प्रेम करते थे, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते थे। तो उनको वो बोलते दशरथ को राज्य दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम 2 वचन मांगे हैं, सब लोग जानते हैं इन कथा को, लेकिन राम को क्यों वनवास दे दिए, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन मंथरा ने सिखाया था, राम जब 14 वर्ष वनवास जाएगा तो भरत यहां निष्कंटक, क्योंकि ये अवधपुरी की सारी जनता भगवान को प्रेम करने वाली, रामचंद्र जी को प्रेम करने वाली है, अतः उनके प्रेम को घुमाने के लिए आवश्यक है कि वो 14 साल वनवास जाए, जिससे जनमानस के अंदर से उन राम जी के प्रति भावना कम होगा, और तब तक भरत अपना भाव बना लेगा राज्य पर बैठ करके। ये मंथरा ने सिखाया था, अनकुब्जा ने ये बुद्धि दिया था। अतः वो रानी को अनुनय विनय करने पर भी वो मानी नहीं, नहीं मानी तो वहां वर्णन है कि महाराज ने राम को बुलवाया कि राम को बुला लीजिए। जब सुमंत जी अंदर आए तो बोले, और सारी जनता बाहर खड़ी थी, और न केवल अवधपुरी के जन थे, उन अनेक देश विदेश से लोग आए हुए थे, भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था। ये सुन करके उन राम के प्रेमी उन अनेक अनेक जगह से आए हुए थे, और सब लोग व्याकुल थे उनका दर्शन करने के लिए, भगवान रामचंद्र जी का उन अभिषेक का दर्शन के लिए बहुत जनता जुटी हुई थी, लेकिन अंदर दूसरा कुछ चल रहा था। भगवान रामचंद्र जी को बुलाया गया और सुमंत को भेजा। जब बाहर नहीं आए महाराज तो सुमंत जी गए, क्या बात है, आपके दर्शन के लिए लोग बाहर खड़े हैं और अभी उन मुहूर्त निकला जा रहा है। महाराज ने केवल उतना कहा, आप राम को बुला लीजिए, बस मेरी आज्ञा है कि आप राम को बुला। तो राम को बुलाने के लिए गए तो भगवान रामचंद्र जी आए, संवाद किया माता के साथ। माता ने कहा, मैं कह रहा था दशरथ जी मूर्छित थे, लेकिन कैकेयी ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे पिता उन बालक की तरह मुखरना चाहते वचन दे करके, लेकिन तुम उनको सत्य करके दिखाओ, तुम सुपुत्र हो। तो राम जी बोले, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। दशरथ जी बोले भी नहीं थे, तो गुरु अर्थ थे, गुरु कहने पर, गुरु का अर्थ यहां पिताजी है, पिताजी को भी गुरु, बड़े लोग को गुरु माना जाता है, तो कहते गुरु रत्न त्यक्त राज्य व्यचद वनम, और कैसे पैर को वो मन में लेके गए, बोलते पद्म पद्माभ्याम, वो जो चरण कमल थे भगवान रामचंद्र जी के चरण, वो पद्म सदृश थे, पद्म पुष्प के समान, प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम अक्षमाभ्याम। कहते हैं कि उन सीता जी के करकमल का स्पर्श पाकर जो मुरझा जाते थे, इतने कोमल चरण थे भगवान रामचंद्र जी के। लेकिन उन्हीं चरणों से कहते हैं कि वो वन में उन्हीं चरणों से घूम रहे थे। सीता जी का हाथ अत्यंत कोमल है, सीता जी का कर इत्यादि या सीता जी का अंग इतना कोमल था कि उनकी सखी जन भी उनको स्पर्श करती थी तो उनका शरीर मुरझा जाता था। इतना कोमल हस्त से भी स्पर्श करने पर भी भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल मुरझा जाते थे, वो कितना सुकोमल होगा हैं? और कहते हैं पथ में जाते थे अमृजित पथ रुजो यो हरिंद्र अनुजाभ्याम। कहते वो चरण जब वन वन में घूम रहे थे, वही चरण कमल वन में जब घूम रहे थे थक जाते थे, कभी वन देखा नहीं था भगवान रामचंद्र जी ने, तो वो थक जाते थे, तो उनकी थकान को दूर करते थे कौन, तो बोलते हरिंद्रा हनुमान महाराज और अनुजाभ्याम लक्ष्मण जी के द्वारा उन चरणों का थकान दूर किया जाता था। और वैरूप्यम शुण पंख छुर पंखा और प्रिय विरह ऋषा और रोपित ब्रिंजिंब तस्ता अब्दिर्बंध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रो अवतात्ना। सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में कहते हैं उनके बाद में भगवान ने शुण पंखा को विकृत कर दिया जो रावण की बहन थी है? और इसीलिए उनको प्रिय विरह सहन करना पड़ा, सीता जी का विरह उनको सहन करना पड़ा। कारण मुख्य कारण ये नहीं है लेकिन ये गौण कारण है। लेकिन हुआ ये कि सुर पंखा जब नाक कान विहीन हो गई, अब कैसे कैसे आई आप लोग सुबह सुना होगा, प्रभु जी ने बताया होगा या जो होगा वो सुने होंगे, उन्होंने तो सब लोग जानते भी है कि कैसे लक्ष्मण जी के द्वारा उनको विरूप किया गया, नाक कान काट लिए, उस राज्यों को खाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने जा करके रावण की सभा में इन सीता जी का रूप का वर्णन किया और वो वर्णन सुन करके वो रावण के हृदय में सीता प्राप्ति का लोल्य उत्पन्न हुआ। और इसीलिए सीता का हरण हुआ, इसलिए कहते प्रिय विरह रुषा आरोपित ब्रिजुंबितम तस्ता अब्दिर्बद्ध सेतु। ये पूरी रामायण कह रहे हैं, वो कहते हैं इस प्रकार प्रिया विरह में वो जब समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पर समुद्र ने जगह नहीं दिया, वो आगे थोड़ा विस्तार से कहेंगे, तो अपनी उन जैसे दृष्टि तो भगवान की हमेशा कोमल रहती है लेकिन कभी कभी क्रोधित दृष्टि करते हैं किसी को शिक्षा देने के लिए, तो उन क्रोधित दृष्टि से समुद्र की ओर उन्होंने देखा, देखने मात्र से समुद्र शुभित हो गया और उनके बाद में उन समुद्र के ऊपर उनकी प्रार्थना से सेतु बंद हुआ। और इस प्रकार कहते हैं उन सारे राक्षस वन को उसी प्रकार जला दिया भगवान रामचंद्र जी ने, जैसे वन में अग्नि उन वन के वृक्षों को जला देती है। कहते ऐसे कौशलेंद्र अवनतात्ना, ऐसे भगवान कौशलेंद्र या अवधपुरी के राजा भगवान अवधेश हमारा रक्षण करे। सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार गाए। उनके बाद में वो थोड़ा विस्तार से उन चरित्र को सुनाने जा रहे हैं। देखिए भगवान का चरित्र हम कितना भी बार सुने है? उतनी बार पुनः पुनः वो हमारे हृदय को स्वच्छ करने वाला होता है। इसीलिए अगाना नहीं चाहिए। भगवान के चरित्र सुनने से व्यक्ति को अगाना नहीं चाहिए, उनको उल्लासित रहना चाहिए। और वस्तुतः हमारा प्रेम भगवान के प्रति कितना है वो तब जाना जाएगा जब हम उनकी कथा की लालसा हम में व्यक्त होगी, हमारे हृदय में उनका लोभ होगा, तब जाना जाएगा ना कि हम भगवान को कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि हम प्रेमी जनों के कुछ उनकी छोड़ी हुई त्यक्त वस्तु को भी देखते हैं संसार में तो उनकी याद आने लगती है। ये तो साक्षात कथा याद दिलाने वाली। हम लोग सदैव बहिर्मुख रहते हैं, कथा में बैठे बैठे वे भी हमारा चित्त बहिर हो जाता है। तो भगवान के लीला चरित्र उन पुनः हमारे हृदय को उस आत्मिक अनुसंधान में जोड़ता है। हमारा अनुसंधान या हमारा मन सदैव माया में धावित होता है और उनको बाहर निकालना मुनियों के लिए भी कठिन है। और बाहर निकाल के ये जरूरी नहीं है कि उनका मन भगवान में लगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम की या भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई जो कथाएं हैं, लीला चरित्र है, वो लीला चरित्र एक ऐसी अद्भुत औषधि है कि वो केवल माया से निकालती नहीं है, उन माया से तत्काल निकाल करके तत्काल भगवान के उन चरित्रों में या भगवान में उनका मन को लगाने वाली है। इसलिए एक ऐसे अक्षर उपाय के रूप में श्रीमद् भागवतम को बताते, पांच महासाधन में चैतन्य उनको एक महासाधन बोलते। इसलिए व्यक्ति को अगाना नहीं चाहिए हरिकथा सुनते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद मानो कहते हैं, हमारे चक्रवर्ती ठाकुर को मैं पढ़ा था, वो बोलते हैं मानो सुखदेव गोस्वामी पाद ये कह रहे हैं कि देखो मैं क्या वर्णन करूंगा, उनका वर्णन उन बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग के द्वारा अनेक बार गाया गया है, यहां तक कि गणेश शेष अशेष, उन गणेश जी शेष जी के द्वारा भी वो अशेष है। साक्षात शेष भगवान के अवतार है, हजारों फणों से भगवान की लीलाओं का गान करते हुए भी उनको शेष नहीं कर पाए। उन अशेष गुणगण राशि को मैं क्या गाऊंगा, तीस पर भी ये अच्छा नहीं लगता है कि एक श्लोक में आपको पूरा रामायण बताना। उनकी भी वो अपनी लालसा को रोक नहीं पाए, कहने का अर्थ सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को पुनः उठा करके कहने लगे, विश्वामित्र अध्वरे येन मारिच आद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सेव हता नैऋत्य पुंगवा। वो कहने लगे वापस जा करके कि विश्वामित्र अध्वर ये मारिच आद्या निशाचरा, उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ में जा करके उन मारिच इत्यादि जो मारिच प्रधान था जिनमें, उन मारिच इत्यादि राक्षसों का वध किया, पर मारिच का वध नहीं किया था, लेकिन वध करेंगे आगे। या आपने सुना होगा कि राम के हाथ से ही वो मरे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मारिच आद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण से, और लक्ष्मण के सामने लक्ष्मण देख रहे थे अर्थात उनका सहाय लिए बगैर भगवान रामचंद्र जी ने इन बड़े बड़े निशाचर को कहते हैं जो नैरित पुंगवा जो असुरों में सबसे बलवान माने जाते थे, ये मरीच इत्यादि, उनको भगवान ने मार दिया। तो मरीच को मारा नहीं था, उनको एक फना रहित तीर मारा था जिसके कारण वो कई योजन दूरी पर जाकर के गिरा था। इसलिए रावण ने जब कहा कि आप जरा हमारा मामा कार्य कर दीजिए, एक स्वर्ण हरिण बन जाइए और राम जी को पंचवटी से राम को निकालिए, दूर कीजिए, तब मैं सीता का अपहरण करूंगा, बोले एक काम कभी मत करो। बोला मैं उनका मार चख चुका हूं, वो तो अच्छा हुआ उसमें फना नहीं लगा था वो तीर में, ऐसे ही सली था खाली, क्योंकि भगवान को लीला करने दिया आगे वो ससुर को जिंदा रखना था, ऐसे तीर मारा बिना भाला, जिसमें जो भाला होता है वो नहीं था, भलक नहीं था उसमें, और ऐसे तीर से मारा और कई योजन जाके के दूर, और रावण को बताया एक काम मत करना, तुम सब कुछ करो लेकिन भगवान ने, लेकिन राम से लोहा मत लो, क्योंकि मैं उनके एक तीर चख चुका हूं। वो तो कैसे कैसे बोला, वो तुम सलाह देने के लिए मैं तेरे पास नहीं आया, सलाह देने के लिए नहीं आया, इत्यादि बहुत भाषण किया। मतलब कह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र ने बिना लक्ष्मण की सहाय उनको देखते देखते ऐसे बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। यो लोक वीर सम्मितो धनुर्यश उग्रम सीता स्वयंवर गृह तिशत उपनीतम आदाय बाल गज लील इवेक्षु यष्टिम संजय कृत नृप विकृष्य बभंज मध्य। और कहते हैं उनके बाद में उन सीता का स्वयंवर होने जा रहा था, और संजोग से विश्वामित्र जी इन दोनों को लेकर के वहां आए। इस बात की याद करते हुए कहते हैं कि यो लोक वीरो सम्मतो धनुर उग्रम, ये संसार में विदित था कि वो धनुष कितना भारी था, वो बहुत भारी धनुष था। सीता स्वयंवर गृह त्रिशतो उपनीत, इनको उपनीत त्रिशत 300 वीरों के द्वारा वो भी घसीट करके लाया जा रहा, उठा करके नहीं, तीन सौ वीर उन जिनको उठा नहीं पाए थे, ऐसे उग्र धनुष धनुर उग्र लोक वीर सम्मत तो कहते हैं कि उन 300 वीरों के द्वारा लाया जाने वाला धनुष को भगवान रामचंद्र जी ने कहते हैं उन बालवत बाल गज लीला, जैसे हाथी का कोई बच्चा खेल खेल में इक्यू का गन्ना का दंड लेकर के उनको तोड़ देते हैं, उसी प्रकार लीला मात्र से उनको बीच में से तोड़ दिया, इतने बड़े धनुष। क्योंकि वो स्वयंवर होते होने जा रहा था सीता जी का, और जित्वा अनुरूपम गुणशील वयो अंग रूपम सीता विधाम शियम उरुष्य अभिलब्धमानाम, कहते वही जो भगवान ने जिनको अपने वृक्ष स्थल पर धारण किया था, वही लक्ष्मी सीता जी के रूप में जनक महाराज को प्राप्त थी, या जनक महाराज ने उनको पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, जो भगवान रामचंद्र जी के बिल्कुल अनुरूप थी, उनके रूप गुण शील उनके चरित्र और उनके अंग इत्यादि से जो बिल्कुल भगवान के अनुरूप, उनकी जो प्रियतमा साक्षात लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जी ही सीता थी, तो उनको उन्होंने प्राप्त किया। मार्गे व्रजन भृगुपतिर व्यनत प्ररुद्धम दर्पम महीकृत यस्तीर राज बीजाम, कहते हैं उन मार्ग में उनको लेकर के जब जाते थे तो उन मार्ग में जिन्होंने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित, उनके बीज को भी उखाड़ करके फेंक दिया था क्षत्रियों के, ऐसा कहते राज बीजाम। वस्तु तो ये जो बात कही गई है तो कोई कहेगा ना, कोई पूछेगा कि राज बीज ही नहीं रहा तो वापस राजा लोग कैसे उत्पन्न होते थे, 21 बार बीज को उखाड़ दिया। लेकिन ऐसा बताया गया, बताते थे कि कई राजा लोग क्षत्रिय उनके डर से उन स्त्रियां उनको आवृत कर लेती थी, बार बार जब वो उन पृथ्वी को उन राजा विहीन करते थे तो उस टाइम कोई ना कोई राजा अवश्य उन स्त्रियों के झुंड में बीच करके छुप जाते थे, उसी से वो परंपराएं चलती जाती थी क्षत्रिय की। और 21 बार जिन्होंने उन राज बीज से रिक्त कर दिया था पृथ्वी को, तो उनका दर्प बड़ा हुआ था, वो धनुष टूटने से ही उन्होंने सुन लिया था। तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या में रत थे, लेकिन जैसे टूटा धनुष सुन लिया कि कोई धनुष को तोड़ दिया, उन्मा धनुष उनका इतना गड़गड़ाहट हुआ था, उनको सुन लिया और उनका अहंकार बड़ा हुआ था। कहते प्ररुद्धम दर्पम व्यनयत, उनका बड़े हुए दर्प को अहंकार को भगवान ने, और वो साक्षात परशुराम जी थे। 21 बार उनका ही अंश का अंश या भगवान का ही एक अवतार जिनको सत्याविश अवतार कहते हैं, ये भगवान के वीर्य को बता, अति मानवीय कार्य है, इसे कोई मानव नहीं कर सकते, ऐसा अति मानवीय कार्य को दर्शा रहे हैं। यार भगवान का जो लीला होता है वो लीलाएं अति मानवीय होती है, तो ऐसी लीला भगवान ने किया कि उनको वापस भेज दिया। महेंद्र पर बोले अभी ये सब दंड देना बंद कीजिए और आप जाइए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से उनका सारा तेज, परशुराम जी का सारा तेज विलीन हो गया, वो शक्ति विहीन अपने को महसूस करने लगे, तब जाकर के उनको समझ में आया कि वो हो, ये तो साक्षात मेरे अंशी है और मैं अंश होकर के उनके सामने खड़ा हूं और अपना पावर दिखाता हूं अहंकार के कारण। कहे तो पहले तो बहुत दिखाया था, क्या क्या बातें बोले हैं उनका वर्णन रामायण में लिखा गया है, लेकिन बाद में उनका दर्प को ठंडा कर दिया। उनको बोले आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की तरह भी रहिए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बाद वर्णन करते हैं कि यह सत्य पास परिवित पितुर निर्देशम स्तैनस्य चापि शीर्षा जगृहे सवार्य राज्यम श्रियम प्रणयन सुजितो निवासम त्यक्त्वा यौवनम अश्रुन इव मुक्त संगः। सुखदेव गोस्वामी पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य पाशाद परिवित पितुर निर्देशम, उनके पिता वचन देकर के वचनबद्ध हो गए थे, तो अपने पिता का वचन को रखने के लिए यद्यपि कहते हैं स्तैनस्य चापि, सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा गया यह शब्द है, यद्यपि महाराज दशरथ ने एक स्त्री के कहने पर यह कार्य कर दिया था, एक स्त्री को यह वचन दे दिया था, या नहीं देना चाहिए स्त्री को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन शीर्षा जगृह सवार्य उनको ग्रहण कर लिया भगवान रामचंद्र जी और अपनी भार्या के साथ अपनी पत्नी के साथ वो वन में चले गए, और वन में जाने के समय उन्होंने क्या क्या छोड़ा और कैसे छोड़ा उनका वर्णन है। राज्य राज्यम श्रियम, वो धन संपत्ति, वो राज्य पूरा ऐश्वर्यशाली राज्य, और उनके साथ प्रणयनी और प्रणयन अपने प्रिय सुषित जनों को, अवध के पूरे लोग चाहते थे भगवान रामचंद्र जी को, और उन निवास को देवता लोग स्प्रिया करते थे। महाराज दशरथ के पास जो ऐश्वर्य था और जो ऐश्वर्य राजमहल में था, देवता लोग के भी द्वारा कहते ईप्सित राज्य लक्ष्मी अन्यत्र लिखा गया है, उनका त्याग कैसे किया, बोले तक्त्वा ययो वनम अश्रु इव मुक्त संग। जिस प्रकार कोई योगी और परिपक्व योगी अपने प्राण की इप्सा के बगैर प्राण को जैसे त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने जनों को, उन अखिल ऐश्वर्यपूर्ण राज्य को उन्होंने ऐसे त्याग दिया। भगवान शिक्षा देते हैं, ये भौतिक वस्तु हमेशा त्याज्य है, उनमें जितना आसक्ति व्यक्ति रखेगा उतना उनको रोना पड़ेगा, ये सारा शिक्षण है। भगवान अपने आचरण से ये सब शिक्षा देते हैं। इनमें से ये कोई त्यागने योग्य वस्तु नहीं है, सुहित को कौन त्यागेगा, है कि नहीं? अपने हितिसी को, स्नेही जन को कौन त्याग? गाली खा करके भी पड़े रहना चाहते हैं ना घर में, है? बूढ़े हो गए, गाली दे रहे लोग, किस पर भी घर नहीं छोड़ता, और वो घर जिनमें एक गिलास जल नहीं मिलता है, कई बार मांगने पर, लेकिन तीस पर भी बूढ़े लोग मंदिर नहीं जाते हैं, घर छोड़ धक्का मार करके निकला, मंदिर जाइए मंदिर जाइए, आपकी अवस्था मंदिर जाने का है, नहीं जाते। लेकिन देखिए कैसे त्याग किया, युवावस्था में ये सब त्याग भगवान दिखा रहे हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते थे तो उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था, उनका वचन को झूठा होने वाला था नहीं, और दशरथ महाराज ने बताया भी नहीं था तुम जाओ, लेकिन तिस पर भी वो अपने पिता के लिए वन में चले गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में कि एक स्त्राणी के कहने पर आप जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं सीता, बोले उस दशरथ का मैं वध करूंगा अपने हाथ से, आप चिंता मत कीजिए, अगर जितना भी भरत का स्नेह भरत का पक्ष लेकर के खड़ा हो जाए भगवान शेष है ना, और बोलते हैं उन सबको मैं मार दूंगा, या आप अपने हाथ से मारिए मैं आपका रक्षण करूंगा। देखते हैं कि भरत का सैन्य और भरत की प्रजा कैसे रोक सकती है, और आप राज्य को हस्तगत कीजिए, आप जाइए। मैं जब कौशल्या के पास भगवान रामचंद्र जी गए और माता कौशल्या का दुख देख करके सुमित्रा नंदन ये बोल रहे हैं, और भगवान के प्रति उन इतना स्नेह था, बोले क्या गलती है आपका, एक गलती बताए रामचंद्र जी में, कोई गलती नहीं है, उनको तो ये गलत लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने चरित्र को इस प्रकार लीला चरित्र करना था भगवान श्री रामचंद्र जी को, तत्व वस्तु ये है, बाकी उनमें कभी गलती देखने से भी नहीं मिलेगी, लौकिक गलती नहीं मिलेगी, वैदिक गलती नहीं मिलेगी, पारमार्थिक गलती को पूछिए मत, वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमार्थ का घनीभूत विग्रह श्री रामचंद्र जी है, कैसे कोई गलती उसमें निकलेगा। लक्ष्मण जी बता रहे राम जी का एक भी गलती नहीं है, मैं देख रहा हूं और जा रहे वो सहन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी हो बस कहते जगरू सब भारिया, और उसी प्रकार त्याग दिया, जैसे कुछ ये कि योगी अपने प्राण को त्यागते हैं, प्राण त्यागना जितना कठिन है उतने स्नेही जन प्रेमी जन को त्यागा, उन दशरथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई भरोसा तो वास्तव में नहीं रहे, उन प्रिय पिता को त्यागा, उनके बाद में जब समाचार मिला कि पिता ने देह त्याग किया है और भगवान रामचंद्र जी का रुदन देखा, वर्णन है वहां पर, आप लोग पाठ किए होंगे या सुने होंगे इनको कहीं पर, वो इतना प्रेम करते थे, और उस प्रेमी प्रजा को भी वो छोड़ना कठिन था, उनको छोड़ा, कहते रक्ष ससुर व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धि तस्या खर तिशिरा दूषण मुख्य बंधुन, दो बज गया जगने चतुर्दश सहस्त्र पारणीय को दंड पाणी अटमानम उवास कृष्ण। सुरेश आगे श्लोक में कहते हैं कि रक्षस ससुर व्यक्त और उनके बाद में सुर पंखा को कुरूप किया, और राक्षस रावण की बहन थी, लेकिन क्यों कुरूप करना, क्या जरूरी था? बोलते अशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि इतनी अशुद्ध थी, वो रावण की विधवा बहन थी, और रावण के ही हाथ से उनका पति मारा गया था, अदुष्ट लोग है ना, वो कहां देखते हैं ये बहनों ही है कि कौन है, नहीं कंस ने पकड़ लिया था ना चोटी, ये दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, इसलिए दुष्ट व्यक्ति का कभी भी उनके साथ उठना बैठना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर नमन भी करेगा तभी भी खतरा है उसमें, हाँ जैसे साधु लोग कहते अगर
धनुष जितना झुकेगा उतना ज्यादा मारेगा जोर से, है कि नहीं? धनुष जब खींचा जाता है चढ़ा करके, तीर चढ़ा करके, तो झुकता है, मतलब उसी प्रकार का झुकना होता है दुष्टों का झुकना। इसलिए दुष्ट का संग नहीं क्या करना चाहिए, उनको दूर से त्याग देना चाहिए, उसी में भलाई है। क्योंकि उनके मुख से वाणी निकलेगा, तीर क्या चलाएगा कोई, ये दुष्ट स्वभाव है, दूसरों को दुखी करना चाहता है। तब बोलते हैं इस प्रकार की ये राक्षसी थी, सीता का रूप सहन नहीं हुआ, वो देखा परम सुंदरी है। और रामचंद्र जी को, और वो मैं कह रहा था राक्षस मार दिया, उन अपने बहनों को मार दिया, वो कहां देखते हैं राक्षस लोग, और ये विधवा हो गई, उनके बाद दुराचारणी हो गई थी, जो कोई भी रूपवान पुरुष को देखती थी असुर का क्या, उनको ही पकड़ करके बस, वो चाहते हैं नहीं चाहते वो नहीं देखती थी। तो सुंदर रूप बना करके आई थी भगवान रामचंद्र जी के पास, लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने फिर रामचंद्र जी के पास भेजा, फिर समझा बुझा करके तीसरी बार आई तो खाने के लिए दौड़ी, बोलते ये लोग एक भी रखना नहीं चाहते। भगवान लक्ष्मण जी को इशारा किया, नक्कन काट दे इसका, जानता हूं मुस्ती को कौन मारेगा, जानता हूं। अरे जाने नहीं देते थे, तारिका को तो मारा था, लेकिन कुछ कार्य था भगवान का, उन देवताओं का कार्य, सुर प्रार्थी थे, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था उन असुर, उन रावण का वध करने के लिए, तो वो कार्य था, उनके पास कुछ कार्य लेना था। कहते थे तस्या खर तिशिरी दूषण मुख्य बंधन, और उनके बाद में उन खर दूषण तिशिरा इत्यादि जो रावण के समान बलवान थे, 14,000 राक्षसों की सेना के साथ जग्गे चतुर्दश स्थान पानी को दंड पानी, उन उग्र धनवा भगवान श्री रामचंद्र जी ने, कहते हैं उनको एक क्षण मात्र में उन्होंने असुर का वध कर दिया सबका, और उवासकश्चम, और जहां रहना कठिन है ऐसे वन में वो घूमने गए। सीता कथाया श्रवणादि पित यच्छेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंदरेण, अर्ध की आगे बात बता रहे हैं, बोलते उसी कुरूप की गई, उन रावण की बहन गई रावण के पास, और बोले इतना नक्कन कृष्ण कर, बोले ये एक राम नामक व्यक्ति वन में विचरण करता है, और केवल मेरा नक्कन नहीं, खर दुष्यंत शिरा को उन्होंने मार दिया। रावण चकित हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे समान बलवान तीनों तीन उनको मार दिया, एक क्षण के लिए वो चकित हो गया रावण, लेकिन दर्पता घमंड था। और ये देख करके उनकी बहन सुनप्रखा सोच रही थी कि कदाचित डर के मारे युद्ध नहीं करेगा रावण उनके साथ, और तो अपना बदला लेना चाहती, बोले सीता कथा श्रवणा दी, और फिर उन्होंने सीता का गुणगान चालू किया, वो कितनी सुंदर आ रहे, तू इधर उधर से जाकर के कहीं से नारी लाता, वो नारी सब कुछ नहीं है उनके सामने, सीता के सुंदरता का वर्णन किया, और उसके कारण कहते हैं दीपित जच्चे है ना, जिनके हृदय में सीता को प्राप्त करने की कामना उदीप्त हुई, सुष्टम विलोक्य नृपते दशकंदरेण, तो कहते हैं उन दस स्कंदर यज्ञ अद्भुतेर वपुषा शमतो अपकृष्टो मारी चास, तो इसके कारण दस स्कंदर रावण जो दस माथा जिनको मस्तिष्क था, तो वो कहते हैं उनको प्राप्त करने की लालसा से मारीच को उन्होंने कहा कि तुम जाओ एक मृग का रूप धारण करो, और मैं इन राम रहित पर्णकुटि से सीता का हरण करूंगा। तो दूसरे आइडिया भी उनके दिमाग में आया था, वो तो कई माया भी था रावण, राक्षस था, वो राम का रूप भी बनाया, सोचा देखा राम का कैसा रूप है, देख लिया माया से, और ठीक डिटो ऐसा रूप बनाया, लेकिन जैसे राम रूप उनका बना तो सब स्त्रियों को माता देखने पड़ा, ये तो बहुत गलत रूप है, उस प्रियाई ने गई भगवान का रूप लेते ही उनके हृदय में उन स्त्रियों की कामना है, प्रत्येक स्त्री को मां के रूप में दर्शन करना चालू किया रावण। बोलते बहुत खराब रूप है। और तीसरा इत्यादि को पहले मारा था इसलिए वो कितना बलवान है ये भी जान गए थे, इसलिए बोलते इसको दूर करो या अपने परिवार के साथ वो मरना चाहता था लंका में भगवान रामचंद्र जी को ले जा करके, कुछ भी हो कई कारण है इसके पीछे। तो कहते जगने अद्भुतर वपुषा सम तो अपकृष्ट। और उसी मारीच को कहते हैं वो पहले तो वो बाहर दूर ले गया उनको, लेकिन उन मारीच को ऐसे मार दिया जैसे कहते हैं कि उन दक्ष के द्वारा नहीं उन रुद्र के द्वारा दक्ष को मारा गया। उन दक्ष यज्ञ की याद करके कहते हैं उसी प्रकार एक तीर से मारीच को मार दिया। और रक्षो अधमेन वृकवध विपिन असमक्षम, कहते भगवान जिनके समक्ष नहीं थे उन भेड़िए की तरह, भेड़िया होता है ना, उन रक्षक के अनुपस्थिति में कुछ बकरी इत्यादि उठाकर ले जाने करके खाते रहते हैं। तो उस प्रकार कहते हैं वृकवध विपिन असमक्षम, दोनों भाई नहीं थे और उनके अनुपस्थिति में वैद्य राज द्वितीयर यपाइता यपियाइता, कहते हैं उन सीता को उसी प्रकार उठा करके लेकर, जैसे एक भेड़िया रक्षक हीन उन पशु को उठा करके लेके जाता है उसी प्रकार वो लेकर के गए। और भ्रात्रा अनेक रूपण बद प्रिया अभियुक्त अस्थि संगी नाम गति मिति प्रथयम चचार, कहते हैं और सीता के विरह में उस प्रकार भगवान रामचंद्र जी एक कृपण वत अपनी प्रिया के वियोग में वो बन बन भटकना चालू किया। अच्छा ये क्यों कहते हैं? तो बोले श्री संगीनाम गतिम विधि प्रथयम, बोलते संसार में अगर किसी भी पुरुष के हृदय में स्त्री की आसक्ति बनी या स्त्री के हृदय में पुरुष की आसक्ति बनी तो उनको कितना भी सक्षम है इसी प्रकार रोना पड़ेगा, ये दर्शाने के लिए शीस संगीनाम गतिमिति प्रथय प्रथम चचार, उनका प्रचार करने के लिए भगवान रामचंद्र जी। और अथवा चक्रवर्ती ठाकुर, मैं उनकी टीका में पढ़ रहा था कि चक्रवर्ती ठाकुर लिखे कि विप्र लंब का आस्वादन करने के लिए अपनी प्रिया के पति जो भाव सीताराम उन साकेत में सदैव साथ में रहते हैं, विरह भाव नहीं होता है। जगदीश ठाकुर कहते हैं कि वो विरह भाव को आस्वादन करने के लिए भगवान रामचंद्र जी से, भगवान रामचंद्र जी का ही ये योजना था। कुछ भी हो भगवान की लीला में कई पर्पस होते हैं, कई कई उद्देश्य से भगवान लीला कार्य करते हैं, चाहे वो उन मृत लोक को या मृत जीव को या हमारे जैसे मृत व्यक्ति को उपदेश है या फिर अपने प्रिय का विरह का जो विप्रलंब भाव आस्वादन हो, कई कारण है। उस कई कारणों से भगवान इस प्रकार की लीला उन मन मन भटकने का लीला कर रहे थे। और दग्ध आत्मकृत बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद महाराज के द्वारा दिया है, लेकिन कहते दग्ध आत्मकृत्य हतकृत्यम अहन कबंधम सक्षम विदायक कपीर वीर दैता गतिम तय, कहते उसी प्रकार दग्ध्वा आत्मकृत्य हतकृत्यम अहन, उन्होंने उनके बाद जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके अपने कर्म बंधन को त्याग दिया था, कर्म बंधन को जला दिया था, ऐसे जटायु का अग्निदाह किया। और पुत्रवत जैसे दशरथ महाराज का जैसे वो कर्मकांड करेंगे आगे, उसी प्रकार एक पितृ रूप में एक पिता जैसे चले गए उसी प्रकार और दग्ध आत्मकृत्य, कहते कि जिनका उन आत्मकृत्य अपने ही कर्म का फल जिनका जल गया था भगवान की सेवा के कारण। क्या सेवा किया था जटायु ने? रावण सीता को ले जा रहा था और उनके साथ युद्ध किया था, उनकी एक पांख कट करके वो गिर गए थे और रावण के साथ युद्ध में उतना जख्मी हुए थे, उनका मृत्यु हो गया भगवान रामचंद्र जी के सामने, तो उनका कृत्य सारा भगवान के हाथ से उनका कृत्य हुआ। कहते कबंदम सख्यम विदाय, और कबंद को भी उसी प्रकार ये दोनों साइड लगेगा कृत्य महान, ये कबंद का भी कृत्य, उनके साप की निवृत्ति भगवान के हाथ से हुई और उनका कर्म बंधन छूट गया, और कबंद भी उस प्रकार भगवान के हाथ से मारा जाने से वो भी वद्दाम को प्राप्त किए। कहते सक्षम विदाय कपीर भीर दैता गतिम ते, और उन बानरों के साथ भगवान ने सख्य किया। बहुत सुंदर इसमें उपदेश मिलता है। पंचम स्कंद के अंतर्गत चक्रधर ठाकुर बोलते हैं अपने परपट में कि पंचम स्कंद में जाइए, वहां पर हनुमान महाराज भगवान रामचंद्र जी का गुणगान गाते हैं। बोले भगवान की भक्ति में कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए हम जैसे वानरों के साथ भगवान ने सख्य किया। अब किसी प्रकार का उच्च कुल में जन्म और बहुत बड़ा विद्या, बहुत बड़ा वाणी का वाक चातुर्य, किसी भी योग्यता का जरूरत नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। ये दर्शाने के लिए हनुमान महाराज कहते हैं कि हम जैसे वानरों के साथ सख्य किया भगवान ने, अर्थात भक्ति में कोई भी योग्यता का जरूरत नहीं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई भी योग्यता का जरूरत नहीं है। जो जहां है वहां भगवान का नाम चालू करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रद्धा के साथ नाम ग्रहण करे भगवान का, और हरि कथा को ग्रहण करे। बस ये दो चीज से, श्रवण और कीर्तन से व्यक्ति तुरंत अपने पिछले अनेक पूर्व जन्मों में किए गए अनेक जो पाप है उन पाप ताप से तत्काल मुक्त होकर के भगवान की उनकी रतिमति हो जाती है। इसलिए इस श्रवण कीर्तन रूपी ये महा उपाय है श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने हमारे हाथ में रख दिया है, हमारी भक्ति की पुष्टोल्लास करके। ऐसे अवसर पर जो भगवान की कथाओं का गुणगान होता है उन गुणगान से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जैसे आज भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि है, उन तिथि पर अगर हम भगवान रामचंद्र जी के गुणों का गान को श्रवण करेंगे तो 10 गुना या 1000 गुना भगवान के प्रति स्नेह बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। आज दोपहर तक उपवास भी था, इसलिए मुझे कहा गया कि आप 2 बजे कैसा भी करके अपने प्रवचन को रोकिए। यद्यपि बहुत सुंदर उन आचार्यों की टीका भी मेरे पास थी, लेकिन
सभी लोग कृपया बैठ जाएं।
कुछ अनाउंस है,
सारे माताएं बैठे कृपा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ महत्वपूर्ण विषय है, उनका अनाउंसमेंट है, तो कृपा करके सारे माताएं बैठ जाएं। मुझे लग रहा है आप लोग अगर जाएंगे कुछ ऐसे विषय बताने जा रहा हूं जो कि छूट जाएगा आप लोगों को, पूरा कथा का लाभ उठाना, तो थोड़ी देर बैठ जाइए 5 मिनट के लिए कृपया, क्योंकि अत्यंत रोचक घटना बताने जा रहा हूं जो आप लोग के लिए रखा गया है अभी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए क्या बता रहा हूं मैं अभी। सबसे पहले हम सब भक्त मिलकर पूज्य गुड़ाकेश प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य गुड़ाकेश प्रभु हमारे मंदिर के कांग्रीगेशन प्रीचिंग के न्यू है, इन्होंने ही यहाँ पर कांग्रीगेशन प्रीचिंग शुरू किए थे जब ये राधा गिरधारी मंदिर शुरुआत हुआ था। जितने भी पुराने भक्त हैं, खास करके गुजराती भक्त वगैरह जो कि अभी अत्यंत सेवा में जुड़े हुए हैं, ये सब गुड़ाकेश प्रभु के द्वारा ही हुआ है, तो हम बहुत आभारी हैं इस प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कथाओं को हमको सुनाने के लिए, और साथ साथ में सारे भक्तों के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र के प्रति भक्तिभाव बढ़ाने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा। साथ साथ में कुछ आप लोगों के लिए भी है, सुनना चाहेंगे क्या आप लोगों के लिए है, सच में सुनना चाहेंगे? तो उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट सुनना पड़ेगा मेरा। चलेगा? फिर मैं अंत में बताऊंगा आप लोग के लिए खुशखबरी क्या है, प्रिय वस्तु आप लोग के लिए रखा गया है, वो अंत में बताऊंगा। सबसे पहला है प्रसाद सेवा के बारे में। देखिए प्रसाद सेवा अनेकों रूप से होता है, कोई प्रसाद का दान देता है वो भी प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा जाके सेवा करेंगे सब लोग, और सर्विस करना वो भी सेवा है। तो सबसे पहला हम अनाउंस करेंगे अगले बार जो हमारा रविवार कार्यक्रम के लिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा है, वो है गरुड़दास प्रभु और घनश्याम प्रभु के काउंसिल ग्रुप के तरफ से। जो भी गरुड़दास प्रभु के काउंसिल ग्रुप हैं और घनश्याम प्रभु के काउंसिल ग्रुप हैं, घनश्याम प्रभु गरुड़दास प्रभु वो नहीं है और दूसरे घनश्याम प्रभु, उनके काउंसिल ग्रुप है, वे लोग कृपा करके अगले रविवार को प्रसादम सेवा, मतलब क्या करना सर्विंग है ना, और भाजी काटना, वो सेवा में आ जाइएगा। समझ में आया? अभी दूसरे प्रकार का प्रसाद का सेवा, जिन लोगों ने आज की प्रसाद का सेवा यानी डोनेशन दान दिया है, हिज ग्रेस लोहिताक्ष प्रभु और हिज ग्रेस वासुदेव प्रभु के तरफ से आज की प्रसादम स्पॉन्सर हुआ है। सभी भक्त एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा इन दोनों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोहिताक्ष प्रभु और वासुदेव प्रभु से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और प्रभु जी के हाथ से श्री श्री राधा गिरधारी जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। कृपया करके लोहिताक्ष प्रभु आए और किसी को न भेजें। नहीं नहीं आप आइए आइए। वासुदेव प्रभु,
वासुदेव प्रभु तो सेवा में होंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। लोहिताक्ष प्रभु चाहे तो हर रविवार को सेवा कर सकते हैं, इसलिए सब भक्त और एक बार हरे कृष्णा बोलेंगे वो सेवा करने के लिए।
और भगवान की कृपा से वो सक्षम भी है प्रति रविवार देने के लिए।
वो लोहिताक्ष प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद वासुदेव प्रभु को, लोहिताक्ष प्रभु को।
शुभ और खुश खबर है, अगले मंगलवार 3 तारीख को एकादशी है, तो कृपया सभी भक्तों को निवेदन है प्रयास करें मंगलारती में आने के लिए, और उस दिन अर्न इत्यादि से वंचित रहें। ध्यान रखें 3 तारीख मंगलवार को एकादशी है। और सबसे विशेष सूचना यह है, आज शाम को फिर से कल की जैसा रामायण के ऊपर ड्रामा है। कई भक्त लोगों ने कल इस ड्रामा का उपभोग किया, देखें, और आज भी वही ड्रामा आगे से है। सीता को क्या रावण सीता हरण करेंगे, वहां से आगे है। विशेषता क्या है, कमल लोचन प्रभु है ना हमारे मंदिर का अध्यक्ष, वो विशेष रावण बने हुए हैं। तो कृपया सभी लोग इसका आनंद लें और आए। और ड्रामा के बाद सबके लिए महाप्रसाद भी रहेगा, इसलिए आप लोग घर में प्रसाद नहीं बनाएंगे तो चलेगा।
माता शरीर के अनुरूप रोल लिया है।
कृपया कृपया सभी लोग आए ड्रामा के लिए। हाँ, इसमें
शरीर के अनुरूप है, मन तो अनुरूप नहीं है, शरीर अनुरूप।
और एक सूचना है, आज दहीसर में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है।
तो जगन्नाथ स्वामी की
रथ यात्रा, महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। ये श्रील प्रभुपाद जी का देन है, साल में एक बार केवल उड़ीसा में हुआ करता था, और उड़ीसा के लोग दावी करते थे कि जगन्नाथ हमारे हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे संसार में ले चले गए, और बॉम्बे में तो हर महीना एक रथ यात्रा ही निकलता है। ये श्रील प्रभुपाद हैं। कृपया बैठे, आप लोगों का जो न्यूज है बताया नहीं, जो आप लोग का खुश खबर है अभी बताने जा रहा हूं मैं। तो ये था सूचना, अगले रविवार को गरुड़दास प्रभु घनश्याम प्रभु के जो काउंसिलिस है, काउंसिल के ग्रुप, उन लोगों के द्वारा प्रसाद का सेवा। शाम को रामायण के ऊपर ड्रामा है, तो सभी भक्त वो ड्रामा देखने के लिए शाम को यहाँ पर आए 7:30 बजे। गौर आरती के बाद आप लोग गौर आरती में भी आ सकते हैं, ठीक है। और अंतिम आप लोगों के लिए खुशखबर यह है, बताइए क्या है। सबके लिए महाप्रसाद है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजम विश्वास नैव जायते शरीर विद्याजल जडेन्द्रिय त्राहे काल जीव फैले विशेष सागरे तार मध्ये जीवाती लोभ माया सुदुर्मती ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जीवा जय स्वप्रसादन दिल भाई सेई अरनाम रित पाव श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाव प्रेमेड़ा क श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री महाप्रसादम की श्रील प्रभुपाद की।